श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 23 श्लोक संख्या 6 दिनांक 6 जून 2015 स्वीकार इज ग्रेस कमल लोचन प्रभु
चले। स्वयं रूप कदामहम ददाति स्वा पदांतिकम वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यह अध्याय का शीर्षक है द्विजपत्नियों का उद्धार। द्विजपत्नियों का उद्धार ये जो अध्याय है हमारे कौड़ीय सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला एक अध्याय है, क्योंकि ये अध्याय और आगे आने वाला अध्याय, इन दो अध्यायों में खास करके ये जो अध्याय हैं राम द्विजपतियों का उद्धार और आगे आने वाला जो अध्याय है गोवर्धन धारण करने की जो लीला है, इन दोनों में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप में सारे जगत को स्थापना किया, सारे जगत में स्थापना किया कि व्रज के जो गोप गोपियाँ हैं व्रजवासी हैं उनका स्थान वर्णाश्रम धर्म में जन्म लिए सर्वोच्च कुल में ब्राह्मण होते हैं उनसे उनका जन्म अधिक है, गोप का जन्म अधिक है। और जो देवता होते हैं अगले अध्याय में उन्होंने प्रस्तुत किया कुछ देवता होते हैं, देवताओं का राजा इंद्र भी क्यों ना हो, उनसे भी ज़्यादा गोप गोपियों का जन्म जो है वो अधिक है। इन दोनों चीज़ों को उद्देश्य में रखते हुए ये दो लीलाओं को समझना चाहिए। जैसे आप इधर पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को बड़ा कृपा प्रदान किया और आगे इस लीला के ऊपर आधारित होते हुए भगवान रासलीला करेंगे, यानी दूसरे शब्दों में भगवान ने चीरहरण की लीला में इन गोपियों का महिमा को वर्णन किया और आगे इन गोपियों को वो रासलीला में स्पर्श करेंगे, उनके साथ नृत्य करेंगे, उनको आलिंगन करेंगे इत्यादि सारे अन्य लीलाओं का वर्णन आगे 29वां अध्याय से हमको प्राप्त होता है। लेकिन बीच में दो लीलाओं का वर्णन इसलिए हुआ है, कोई प्रश्न पूछे तो कृष्ण ने तो गोपियों को तो आलिंगन किया लेकिन ब्राह्मणों की क्या स्थिति है, देवताओं का क्या स्थिति है, तो इस श्लोक इस अध्याय में ब्राह्मणों की जो स्थिति है उनका वर्णन हो रहा है। तो वैसे एक तरीके से देखा जाए इधर इस अध्याय का शीर्षक है द्विजपत्नियों का उद्धार, तो द्विजपत्नियों का बड़े ही उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने। उस अध्याय में एक विशेषता है, विशेषता ये है कि आप सबको ये लीला मालूम है कि द्विजपत्नियाँ भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आई तो सारा आहार सब कुछ बना के लेके आए, कृष्ण ने सब भोजन को स्वीकार किया, उसके बाद द्विजपत्नियों ने कहा कि बस आपके साथ ही हम रहना चाहते हैं, जय श्री राधा गिरिधारे भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, हम आपके बिना नहीं रह सकते, आपके साथ में चलो, हम आपके साथ में हमको लेके चलो। तो भगवान श्री कृष्ण उनको स्वीकार नहीं किया, उनको बोला वापस जाओ। तो है ये उनकी उनको उन्होंने हृदय में ही आलिंगन किया, वो सब बात की बात आती हैं, लेकिन बात यह है कि गोपियाँ भी कृष्ण से मिलने के लिए जब आई रासलीला के समय में, उस समय कृष्ण ने भी उनको कहा था गोपियों को, आप चले जाओ, ये ठीक नहीं है रात को इस प्रकार आना। हाँ, भले ही मुझे कितना भी चाहते हो, स्त्री का धर्म नहीं है, आप अपना जो पतिव्रता धर्म है उसको पालन करना चाहिए, आप जाओ घर में वापस जाओ। फिर गोपियों ने वापस कृष्ण से बातें किया, जिसको प्रणय गीत कहा जाता है। ये सब करने के बाद कृष्ण को गोपियों को स्वीकार करना पड़ा, रास करना पड़ा, या कृष्ण जो है गोपियों के साथ रास किया और उनको उनका शरीर को स्पर्श किया, लेकिन द्विज पत्नियों को स्पर्श नहीं किया। ऐसा क्यों? तो इधर कहा गया है हमारे गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार कि जब तक व्यक्ति को गोप जन्म नहीं मिलता है तब तक, या गोप या गोपी का जन्म नहीं मिलता है, यानी गोपी के गर्भ से जन्म नहीं होता है, तब तक कृष्ण जो है वो स्पर्श नहीं करेंगे, ही विल नॉट टच। भले वो कितने ही बड़ा ब्राह्मण कुल का व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े देवता भी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ऊंचा जन्म क्यों ना हो, ब्रह्मा तक भी क्यों ना हो, लेकिन जब तक गोपी के गर्भ से जन्म नहीं होता है कृष्ण हमको स्पर्श नहीं करने, ही विल नॉट टच अस। रास की बात छोड़िए, अन्य बात छोड़िए, टचिंग इज ओनली पॉसिबल, उनको स्पर्श नहीं करेंगे। तो उनके साथ लीला तभी संभव है जब गोपी जन्म प्राप्त होता है। और देखिए आगे हम देखते हैं कि मान लो कि किसी का सिद्ध हुआ है, साधना करते हुए प्रेम प्राप्त हुआ है, प्रेम के स्तर में प्राप्त होने के बाद भी सीधा भगवान की धाम में नहीं जाएंगे। हमारे गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार ये जो सिद्ध व्यक्ति है, साधना सिद्ध आत्मा है, जीव है, उनका जन्म प्राप्त होता है गोपी के गर्भ से। कहाँ प्राप्त होता है गोपी के गर्भ से? जहाँ कृष्ण की लीला हो रहा हो। कृष्ण की लीला जो है वो साइमल्टेनियसली साथ साथ में भगवान गोलोक वृंदावन धाम में आध्यात्मिक जगत में होता रहता है, और साथ साथ में ये जो भौतिक जगत में भी होता रहता है। वैसे आप एक ब्रह्मांड लीजिए, एक ब्रह्मांड ने कृष्ण लीला समाप्त किया तो वो लीला जो है दूसरे ब्रह्मांड में प्रकाशित करते हैं। जैसे कृष्ण का जो जन्म का जो लीला है अभी भी भौतिक जगत में कोई और ब्रह्मांड में हो रहा है, और जैसे जन्म का लीला ये ब्रह्मांड में हुआ तो दूसरा ब्रह्मांड में जाता है। तो इस प्रकार भगवान की जो रास लीला है अभी भी ये कोई और ब्रह्मांड में चल रहा है। तो ये समझना चाहिए भगवान की जो लीलाएँ हैं वो गोलोक वृंदावन धाम में भी नित्य रूप में चलता रहता है और इस भौतिक जगतों में भी नित्य रूप में चलता रहता है। जिस ब्रह्मांड में भगवान की लीला चलती हो उस ब्रह्मांड में हमारा या सिद्ध देव जिसको प्राप्त हुआ है या साधन सिद्ध प्राप्त हुआ है, साधन की सिद्धि प्राप्त हुआ है साधना करके, उनका जन्म उस ब्रह्मांड में गोपी के गर्भ से होता है। जब उस ब्रह्मांड में जो गोपी के गर्भ से होता है तो तब भगवान जो है हमको स्पर्श करते हैं या उसको व्यक्ति को स्पर्श करते हैं। सीधा भगवान की धाम में नहीं जाता है कोई व्यक्ति। हमारे जैसे वैकुंठ की जो प्राप्ति है वो सीधा हो सकता है, मृत्यु के बाद जो है अगर कोई सिद्ध हो चुका है वो सीधा वैकुंठ धाम में जा सकता है, लेकिन गोलोक वृंदावन धाम में कोई सीधा प्रवेश नहीं कर सकता। पहले गोपी गर्भ में जन्म, तब बाद में ही हमारा भगवान की धाम में जाना वो संभव है। ये बात को इस लीला में, ये दो लीलाओं में पुष्ट किया जा रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात जानने लायक है कि गोपी गर्भ से जब तक जन्म नहीं होगा तब तक कृष्ण हमको स्पर्श नहीं करेंगे, ही विल नॉट टच अस। सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी, साधना में सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी गोपी जन्म अति आवश्यक है, विदाउट। इसलिए ब्राह्मणों की पत्नी जो द्विज पत्नियाँ, उनको गोपी जन्म प्राप्त नहीं हुआ था, गोपी के गर्भ से जन्म नहीं हुआ था, इसलिए कृष्ण ने उनको बहिरंगिक रूप में उनके शरीर को स्पर्श नहीं किया। कृष्ण ने क्या किया, उनकी आँखों से अंदर प्रवेश किया और हृदय में प्रवेश किया, द्विज पत्नियों के हृदय में प्रवेश किया, और द्विज पत्नियों ने कृष्ण जो अपने हृदय में रखे उन हृदय में आलिंगन किए, लेकिन बहिरंगिक रूप में कृष्ण उनको स्पर्श नहीं किया। इसका वर्णन इस अध्याय के आखिरी में आपको प्राप्त होता है। खैर, अभी ये आज के श्लोक और इसके पहले वाला जो श्लोक जिसका तात्पर्य नहीं, उन दोनों के ऊपर थोड़ा चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात आप सबको मालूम है, पिछले अध्याय के अंत में सारे गोपों ने कहा कृष्ण को, कहा कि बहुत भूख लग रहा है, क्योंकि कृष्ण उस दिन बहुत दूर चले गए थे, गोवर्धन से भी थोड़ा आगे चले गए थे। ये जो लीला हुआ गोवर्धन में, अभी भी एक गोवर्धन से 2-5-6 किलोमीटर दूर में एक गाँव है जहाँ ब्राह्मणों का अभी भी निवास है, तो उसके नज़दीक में सारे ग्वाल बाल सब गए थे। तो उस समय एक सारे ग्वाल बाल ने कृष्ण के पास आके बताया कि भूकासुरम को बहुत तड़पा रहा है, ये जो अनेकों अनेकों असुर होते हैं, आपने बहुत असुरों को तो मारा है, अभी देखते हैं भूकासुर को मार सकते हो क्या। ग्वाल बालों को ऐसा था, उन्होंने देखा बहुत असुरों को मारा है, लेकिन सबसे बड़ा असुर होता है भूकासुर। भूकासुर एक बार आता है तो हम सहन नहीं कर सकते भूकासुर को, बाकी असुरों को तो सहन कर सकते हैं लेकिन भूकासुर को सहन करना बहुत मुश्किल है। अली जय को आप भूकासुर को मार सकते हो क्या, इसका एक चैलेंज था। चलो सब लोग गए और कृष्ण के पास गए, राम राम महाबाहो कृष्ण दुस्सह निर्भ्रमा एषा वै भादते क्षुण्ण तक्षान्तिं कर्तुम अर्हसः, तक्षान्तिं कर्तुम अर्हसः, उनको शांत करो, किसको, क्षुण, हमारे भूख पेट में जो भूख लग रहा है उसको आप शांत करो। तक शांतिम कुर अर्हतः, जो आप समझे जिस प्रकार समझे उसको करो, क्योंकि दोपहर के समय में क्या किया तो लोगों ने खा लिया था, खाने के बाद भी उनका भूख गया नहीं, उनको जो लंच पैक लेके आए थे सब खाने के बाद बहुत भूख लगा। तब ये सुन के तो कृष्ण ने उनको कहा प्रयात देव यचनम, तो कृष्ण ने उनको कहा क्या करो, प्रयात देव यजनम, नज़दीक में यज्ञ चल रहा है। कृष्ण को कैसे मालूम पड़ा यज्ञ चल रहा है, क्योंकि ब्राह्मण लोग नित्य यज्ञ करते हैं, कृष्ण को मालूम है, ऐसा नहीं कि रोज़ एक विशेष यज्ञ चल रहा है, ब्राह्मणों का रोज़ का कार्य था यज्ञ करना। तो उन्हें कहा कि इधर देव यजनम ब्राह्मण ब्रह्मवादिन, तो कृष्ण ने कहा एक ब्राह्मण लोग हैं ब्रह्मवादिन, वो ब्रह्म ज्ञान में निपुण है, जाओ सत्रम आंगीरसम नाम, आंगीरस नामक यज्ञ इधर चल रहा है, हे आसते स्वर्ग कामया, कृष्ण ने पहले से कर दिया। तो यज्ञ भुक ईश्वरः, कृष्ण जो है वो यज्ञ के वास्तविक भोक्ता कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे थे। तो कृष्ण ने उनको कहा सारे ग्वाल बालों को कि उन ब्राह्मणों के पास जाओ, वो यज्ञ कर रहे हैं, किसके लिए यज्ञ कर रहे हैं, वो स्वर्ग कामया, स्वर्ग की कामना से यज्ञ कर रहे हैं। तो जैसे उधर जाओ तत्र गत्वाधनम गोपा, उधर जाके क्या करो, आप ये कहना कि बलराम जी ने आपको भेजा है, बाद में मेरा नाम लेना है, जाके भिक्षा मांगो, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कहना बलराम जी ने भेजा, क्यों, कृष्ण को कहा मालूम था अगर ये ब्राह्मणों को जाके बोलेंगे कि कृष्ण ने भेजा, कृष्ण तो कौन है, गोप के पुत्र है, गोप बालक है, लेकिन सारे ब्राह्मणों को मालूम है कि बलराम जो कौन है, क्षत्रिय के पुत्र है, क्यों, बलराम जी विख्यात थे, रोहिणी के पुत्र हैं, रोहिणी जो है वसुदेव की पत्नी है, कि सबको मालूम है, सारे ब्राह्मणों को मालूम है कि बलराम जो है वो क्षत्रिय का पुत्र है और कृष्ण जो है गोप के पुत्र है, लेकिन कृष्ण को मालूम था अगर ये ब्राह्मणों के पास जाके बोलेंगे कृष्ण ने भेजा है, कृष्ण का आदेश है, गोप लोग थोड़ी ना आदेश दे सकते हैं, गोप मतलब वैश्य, वैश्य लोगों को आदेश देने का अधिकार थोड़ी ना होता है, अस्तित्व में ये ग्वाल बाल हिचकिचा रहे थे, हम तो गोप हैं, अभी ब्राह्मणों के पास जाके भिक्षा मांगना ठीक नहीं है, अस्तित्व में ब्राह्मण को भिक्षा देना चाहिए, उनके पास जाके भिक्षा मांगना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन क्षत्रिय का अधिकार होता है, भले ही ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि ब्राह्मणों की संपत्ति को लेना नहीं चाहिए, ब्राह्मणों के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, लेकिन क्षत्रियों का आदेश मानना ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, भले ही वो ब्राह्मण क्षत्रियों से श्रेष्ठ है, लेकिन क्षत्रिय जो है, राजा जो है भगवान की प्रतिनिधि होने के नाते, तो ब्राह्मण जो है क्षत्रिय का आदेश मानते हैं, राजा का आदेश मानते हैं, तो इसलिए कृष्ण ने कहा कि आप जाओ कि बलराम ने भेजा है, बलराम जो क्षत्रिय हैं उनका आदेश को तिरस्कार नहीं करेंगे ब्राह्मण, तो उनके बल के ऊपर आप जाके मांगो, बाद में मेरा नाम भी ले लेना। वैसे कृष्ण को जरूरत नहीं था ये बोलने के लिए, मेरा नाम भी ले लेना, लेकिन कृष्ण ने कहा बाद में मेरा नाम लेना। अभी क्या हुआ, ये ग्वाल बाल कृष्ण का बात सुन के पहुंचे। इसके पहले वाला श्लोक यानी पांचवा श्लोक के वर्णन हुआ है, इत्यादिष्टः भगवताः। इत्यादिष्टः, इस प्रकार आदेश सुनने के बाद, भगवान से कृष्ण से आदेश सुनने के बाद क्या हुआ, गत्वा याचनात् एतता। गत्वा गए, कहाँ गए, ब्राह्मणों के पास गए, किसके लिए गए, याचनात् एतता, यानी कृष्ण का ये बात सुन के ग्वाल बालों के मन में जो शर्मिंदा थी, जो लज्जा थी, वो या हिचकिचाहट थी, क्योंकि जाके भिक्षा मांगना वो थोड़ा सा हिचकितापन होता ही है कि नहीं, तो कृष्ण ने उसको कहा चिंता मत करो तुम जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना जाओ। तो ये बात सुन के उनको ये लज्जा निकल गई। गत्वा याचनाते तथा गए, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी तरह से गए, जाके ब्राह्मणों को देखते ही ये लोगों ने क्या किया, ग्वाल बालों ने, कृष्ण और बलराम इधर खड़े, सारे ग्वाल बाल गए, एक दो एक भी नहीं छूटे थे। कृष्ण और बलराम दूर में हैं और गांव के अंदर जहाँ यज्ञ चल रहा है उधर सारे ग्वाल बाल पहुँचे। पहुँचे क्या किया उन्होंने, कृतांजलि। कृतांजलि मतलब उन्होंने अपने दोनों हाथ को जोड़ा। तो दोनों हाथ को जोड़ने के बाद भी ब्राह्मण लोगों ने जरा घूम के भी नहीं देखा कौन आया क्या हो, अपना अपना स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, अपने अपने यज्ञ में व्यस्त थे, क्योंकि ग्वाल बाल आएंगे कौन है, वो तो निम्न जाति के हैं ना, ब्राह्मणों को तो जरा ध्यान भी नहीं गया उनके पास। तो कृतांजलि, उनका प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद भी उनका हृदय नहीं कि पिघला, दोनों हाथ जोड़ा। बाद में क्या किया, पुता अभिप्राण दंडवत पतिता भुवी, दंडवत पतिता भुवी। उसके बाद भी ब्राह्मणों का ध्यान इन बच्चों के ऊपर या इन ग्वाल बालों के ऊपर नहीं गिरा, तो सारे ग्वाल बाल ने क्या किया, दंडवत किया, पतिता भुवी। वहाँ पतिता मतलब गिरे, कहाँ गिरे, दंड कैसे गए, दंडवत, दंडवत करते हैं, दंडवत प्रणाम। उसके बाद सब लोगों ने दंडवत किया। जैसे दंडवत किया फिर भी उनका ध्यान या ब्राह्मणों का ध्यान नहीं गया ग्वाल बालों के पास। तो श्रील विश्वनाथ ठाकुर वर्णन करते हैं, जब एक ग्वाल बाल इन ब्राह्मणों को दंडवत कर रहे थे और ब्राह्मण लोग स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, तो क्या हुआ, इन ग्वाल बालों का जो तेज है, उनके शरीर से उत्पन्न हुआ तेज है, वो बढ़ गया। अस्तित्व में बढ़ने की बात नहीं है, इन ग्वाल बालों के ऊपर ब्राह्मणों का ध्यान नहीं जाने पर क्या हुआ, इन ब्राह्मणों का तेज कम हो गया। अभी देखिए कितने ही बड़ा ब्राह्मण क्यों ना हो, अगर वो भक्तों को आदर नहीं देता है, उनको स्वागत नहीं करता है, तो अपनी ब्राह्मणत का घर रहता है, तुरंत उनका तेज जो है वो खत्म हो जाता है, उनका तेज नष्ट हो जाता है, ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। अभी इधर ग्वाल बाल ने, ग्वाल बाल आके कृष्ण के परम भक्त हैं ग्वाल बाल, वो दंडवत करने पर, तो इधर ऐसा वर्णन नहीं किया गया ब्राह्मणों का तेज कम हो गया, लेकिन इधर वर्णन ऐसा आता है कि ग्वाल बालों का तेज जो है बढ़ गया। ग्वाल बालों का तेज जो है वैसे था वैसे ही था, लेकिन बात ऐसा था कि ब्राह्मणों की तुलना में इन ग्वाल बालों का तेज जो है अति शोभायमान होने लगा। इन ब्राह्मणों का तेज कम हो, यज्ञ कर रहे थे लेकिन फिर भी तेज कम हो गया, ग्वाल बालों का तेज बढ़ गया, या ग्वाल बाल बड़े तेजस्वी हो गए। तो क्यों, क्योंकि इस प्रकार का अनादर होने पर, तो ये अपराध माना गया है। तो ये ब्राह्मण का सबसे बड़ा अपराध यही था। क्या अपराध था, ये भक्तों का कृष्ण की पार्षदों की जो महिमा है उनको नहीं जानना, ये ब्राह्मणों का सबसे बड़ा अपराध है। उधर पहले ही भगवान ने कहा ये ब्रह्मवित है। ब्रह्मवित मतलब क्या है, जो सारे ब्रह्म कार्य इधर वेद जानने वाले ब्राह्मण हैं। तो वेद को जानना एक अलग होता है, वेद का वास्तविक अर्थ को जानना अलग होता है। वेद जानना मतलब क्या है, वेद के मंत्रों को पठन पाठन करना, पढ़ना और पढ़ाना। लेकिन वैदिक मंत्रों का वास्तविक जो सिद्धांत है, वास्तविक मर्म है, वो क्या है, कृष्ण और कृष्ण के प्रेम भक्तों को जानना, ये ब्राह्मण वो नहीं जानते थे। इसलिए ब्राह्मणों में तीन स्तर होता है, द्विज विप्र और वैष्णव। द्विज वो हैं जो दूसरी बार जन्म हुआ यानी उपनयन हुआ है, यानी वो वेद पढ़ने का अधिकारी है, उसको द्विज कहा गया है। यानी जब तक उनका उपनयन संस्कार नहीं होता है तब तक वो वेदों को पढ़ नहीं सकता, तो उसको द्विज कहा जाता है। जिसको वेदों को पढ़ने का अधिकार है वो द्विज है, और वेदों को पढ़ने के बाद धीरे धीरे से वो सीख जाता है वो विप्र होता है। विप्र मतलब क्या है? एक्सपर्ट। वेदों को पढ़ने में वो एक्सपर्ट है, और पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है। लेकिन विप्र के बाद होता वैष्णव। वैष्णव मतलब क्या है? वेदों का सार जो है भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण के भक्त और भक्ति, ये तीनों को जानना, ये जो है वैष्णव माना जाता है। यानी वेदों का अर्थ का साक्षात्कार होता है तो वैष्णव है, वेदों को पढ़ सकता है और पढ़ा सकता है तो विप्र है, वेदों का पढ़ाने का अधिकार जिसको प्राप्त होता है वो द्विज है। लेकिन ये सब कौन थे? द्विज थे और कुछ विप्र थे, लेकिन उन ब्राह्मणों में कोई वैष्णव नहीं था। तो इस बात को प्रकाशित करने के लिए कि भगवान ने इधर सारे ग्वाल बालों को कहा, भले आप कितने ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक वेदों का सार का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक वैष्णव नहीं होता है। तो इधर इस अपराध की वजह से ब्राह्मणों का तेज कम हो गया। अभी ग्वालवाल दंडवत करने के बाद भी इन ब्राह्मणों का ध्यान इन ग्वालवाल के ऊपर गया नहीं। अब देखिए, स्वाहा स्वाहा किए जा रहे और सारे बच्चे खड़े हो, दंडवत किया, पहले प्रणाम किया, कृतांजलि, बाद में दंडवत किया, उसके बाद भी उनका ध्यान नहीं गया। तब इस श्लोक में ग्वाल बाल जो है बोलना शुरू किए, उन्होंने कहा हे भूमि देवता श्रुणुता, तो वो बोलना शुरू किए हे भूमि देवता, तो बड़े आदर के साथ वर्णन करने लगे, उनको संबोधित करने लगे ब्राह्मणों को। ने कहा कि ब्राह्मण करके संबोधित नहीं किया, उनको कहा कि भूमि देवता, ब्राह्मण को भूमि में निवास करने वाले देवता कहा गया है, क्योंकि वो देवता से कम नहीं है। क्यों? ब्राह्मण होते हैं जो वैदिक वेदों को संरक्षण करने वाले हैं, तो वैदिक वेदों को पढ़ाने वाले हैं, धर्म को संरक्षण करने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण का और एक नाम है भू देवता। देवता वैसे भूमि में निवास नहीं करते, वो स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो है वो भूमि में निवास करने वाले देवता, यानी देवता के समान माने गए हैं। क्योंकि देवताओं का आहुति पहुंचाना है तो ब्राह्मण के द्वारा ही होता है, इसलिए बड़े आदर के साथ उनको संबोधित किया इन ग्वाल बालों ने, हे भू देवता। इसलिए ब्राह्मण जन्म जो है बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। कहाँ श्रेष्ठ माना गया है? ये वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन भक्ति के स्तर में ब्राह्मण कुल जो है, भले वो जन्म लिया लेकिन कृष्ण जो है वो इसको ज़्यादा मानते नहीं है। गोप जन्म हुआ तो कृष्ण स्वीकार करते हैं, ब्राह्मण जन्म हुआ ठीक है वो महान है, लेकिन कृष्ण की प्राप्ति जो है वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के ऊपर आधारित नहीं है। वर्णाश्रम में श्रेष्ठ माना जा सकता है, सही बात है। हाँ, चार वर्ण चार आश्रम में ऐसे अनेकों शास्त्र हैं, वर्णन है कि ब्राह्मण जो है उनका जन्म श्रेष्ठ है वर्णाश्रम धर्म में, लेकिन वैष्णव सिद्धांत जो है वर्णाश्रम से परे है। तो वर्णाश्रम से परे होने के नाते ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी वो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गोप कुल में जन्म होता है तो वो कृष्ण की प्राप्ति हो सकता है। इस बात को भगवान सबको दिखाना चाहते हैं। एक थे ब्राह्मण, उनको तो उनकी द्विज पत्नियां वो कृष्ण के भक्त है, लेकिन फिर भी कृष्ण उनको स्पर्श नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका द्विज कुल में या उनका गोप कुल में जन्म नहीं हुआ है। तो इधर भूमि देवता, भले वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भले कितना भी श्रेष्ठ कुल में जन्म क्यों ना हुआ हो, फिर भी इधर कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती, कृष्ण को जान भी नहीं सकते। इतना हद तक आगे कहा गया है कि ब्राह्मणों को मालूम था कि ये जो ग्वाल बाल जो आए ना, ये कृष्ण के भक्त है। अभी कृष्ण तो आए नहीं, लेकिन कृष्ण जरूर भेजा होगा। ये ब्राह्मणों को डर था। क्या डर था? कहीं मान लो कि हम कृष्ण को या इन ग्वाल बालों को हमने दान दिया, कहीं कंस को पता लग गया तो हमारा दक्षिणा बंद हो जाएगा, उल्टा हमको हमको कैद में भी डाल सकते हैं, तो इसलिए हम उनको देखेंगे भी नहीं, ऐसा ब्राह्मण सोच रहे थे मन ही मन में। तो हे भूमि देवता सुनुता, आप सुनो। तूने कहा ये ग्वाल बालों ने गड़बड़ कर दिया। कृष्ण ने बोला था पहले बलराम का नाम लेना, बाद में मेरा नाम लेना। हाँ, ये कहना बलराम ने भेजा है, बाद में मेरा नाम ले सकते हो। तो वैसे कृष्ण ने कहा कि नाम लेना, इसके ऊपर ही आचार्य ने कहा है कि कृष्ण ने कहा ग्वाल बालों को आप जाओ, ये ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा करते करते सो रहे हैं यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोए हुए हैं, तो इन ब्राह्मणों को जगाना है तो मेरा नाम सुनाओ, मेरा नाम संकीर्तन करो, मेरा कृष्ण और नाम राम इन दोनों का नाम संकीर्तन करो। तो इस प्रकार उन्होंने कहा। तो ग्वाल बालों ने क्या सोचा, इधर गड़बड़ किया, क्या किया गड़बड़ किया, कृष्णस्यादेश कारिणः। तो जैसे कभी कभी घर में ऐसा होता है ना कि कोई घर में कोई आया, मान लो कि कोई कर्जा लिया पिताजी ने और कर्ज वापस देने के लिए वो जो व्यक्ति आया है, तो घर में आया है तो बच्चा जो है पिताजी के अंदर बैठे है, पिताजी को जाके बोलते फलाना व्यक्ति आया है, पिताजी बोलते हैं बेटा जाके बोल दो पिताजी नहीं है। तो बच्चा जो है बाहर जाएगा और बोलेगा मेरे पिताजी ने बोला कि ये कहने के लिए आपको कि वो नहीं है घर में तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं अभी कृष्ण ने ग्वाल बालों को बोला था आप जाओ ये कहना कि बलराम ने भेजा है, बाद में मेरा नाम कहना। तो ये बात सीधा ग्वाल बालों ने कहा कृष्ण के आदेश के अनुसार हम आए हैं इसलिए कृष्णस्य आदेश कारिणः। तो इधर इन्होंने गड़बड़ कर दिया, इतना तो मालूम होना था कि अब आप जाओ जाके कृष्ण का सीधा आदेश को पालन करना चाहिए, ये बोलने की क्या जरूरत है कृष्ण के आदेश के अनुसार हम आए हैं। लेकिन बोल दिया उन लोगों ने कृष्णस्य आदेश कारिणः प्राप्तान। तुमने कहा कि हम कृष्ण के आदेश के अनुसार आए हैं, तो फिर भी ये बात बोलने पर ही ब्राह्मणों ने देखा भी नहीं, क्योंकि और डर लगा, देख भी लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा इन लोगों को, क्योंकि कृष्ण का नाम सुनते ही उनको लगा डर लगा, कंस का डर लगा, कंस जो है वो कृष्ण को मारना चाहता है, ब्राह्मणों को सब मालूम थे जब, और कंस जो कृष्ण को मारना चाहता है, मान लो कि हम कृष्ण को कुछ भी कह दिया अगर पता लग गया कंस को कि हमको मार देगा कंस, तो इसलिए ब्राह्मणों ने ये बात सुन के और एकदम गंभीर हो गए, वो स्वाहा स्वाहा के ऊपर ध्यान दे रहे थे, ग्वाल वालों के ऊपर जरा देखा भी नहीं। तब ग्वाल वालों ने एक शब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा प्राप्तान, प्राप्तान मतलब देखो हमको, देख भी नहीं रहे हो कम से कम देखो तो सही। हम लोग आए, कृतांजलि, हाथ जोड़े, दूसरा दंडवत किया, और श्रुणुता सुनो हम ये बात भी कहे, और तो चौथी बात कृष्ण ने भेजा ये बात को कहे, फिर भी आपका ध्यान नहीं जा रहा है, जरा देखो तो सही हमको, इस बात को कहा प्राप्तान। तो बाद में कहा, सोचे होंगे कि अभी क्या करें, जानीता, जानीता ये शब्द के बाद है कि आप जरा हम हमारी बात को तो सुनिए, हम जो कहना चाहते सुनो। बाद में उन्होंने कहा भद्रम, भद्रम हम आपका अहित करने के लिए नहीं आए हैं, आपका हित करने के लिए आए हैं। अभी ग्वाल बाल कह रहे हैं इन ब्राह्मणों को, भद्रम ते भद्रम, भद्रम वह गोपान्नः रामचोदितम। तो बाद में उन्होंने सोचा कि कृष्ण ने कहा था ना हमको ये कहने के लिए राम ने भेजा, तो बाद में लोगों ने कहा राम ने भेजा है हमको, लास्ट में इस बात को कहा कि राम चोदितम, राम ने कहा। अभी प्रश्न यह आता है कि ग्वाल बालों ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा कि कृष्ण ने भेजा है हमको, कृष्ण के आदेश के अनुसार हम आए हैं। तो ग्वाल बालों ने सोचा कि भले ही बलराम जी हैं लेकिन बात तो सत्य है, कृष्ण ने हमको भेजा। दूसरी बात यह है कृष्ण जो है वो गोप कुल में जन्म लिए हैं और हम भी गोप हैं, और गोप कुल में जन्म लेना ये वर्णाश्रम धर्म के परे हैं। ये जो सिद्धांत मूल बात जो इन दो अध्यायों में या खास करके इस अध्याय में प्रस्तुत किए जाने वाले हैं, इस बात को एक ग्वाल बालों ने पहले से ही बता दिया। क्या कहा कि कृष्णस्य आदिष्ट, कृष्ण के आदेश के अनुसार ही हम आए हैं, इसलिए हे ब्राह्मणों सुनो कि कृष्ण का जन्म जो है गोपकुल में हुआ है और हमारा जन्म गोपकुल में हुआ है। आप ये सोचते होंगे कि क्षत्रिय का जन्म जो है वो श्रेष्ठ है या ब्राह्मण का जन्म श्रेष्ठ है, नहीं, गोप का जन्म जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि जिसको गोप का जन्म मिलता है, गोपी के गर्भ से जन्म मिलता है, उसी को कृष्ण आलिंगन करते हैं, उसी को कृष्ण स्पर्श करते हैं। इस बात को करने के लिए उन्होंने कहा कि गोपान नव राम चोदितम, कृष्ण और शक्तिशाली है बलराम से। इस बात को ध्यान में रखते हुए इधर गोपों ने इस बात को कहा, कृष्ण स्यादेश कारिणः प्राप्तान जानित भद्रम वो गोपान्नौ रामचोदितम। लास्ट उन्होंने राम का नाम उच्चारण किया, बलराम ने भी हमको भेजा है, राम च ओदितान, मतलब राम ने भी, बलराम ने भी हमको भेजा है। अभी इतना सब कुछ करने के बाद भी ब्राह्मण लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि कृष्ण का नाम सुनते ही और डर लगा कि कहीं हमको कंस ये ना कर ले वे। तो आगे के श्लोकों में आप देख सकते हो कि इन ग्वाल बालों ने और विनती किया, और विनती करते उन्हें कहा कि हमको भूख लग रहा है, कृष्ण को भूख लग रहा है, बलराम को भूख लग रहा है, हमको भी भूख लग रहा है, आप जो है हमको थोड़ा सा भिक्षा दीजिए। इतना कहने के बाद भी ब्राह्मणों ने जरा सा भी उनके ओर मुड़ के देखा भी नहीं, दे डिड नॉट इवन लुक एट देम। तो उसके पीछे भी अनेकों अनेकों कारण और अगले श्लोक में आता है। लेकिन ये सब ग्वाल बाल बड़े निराश होके वे वापस कृष्ण के पास गए, कृष्ण हंसने लगे, ही स्टार्टेड लाफिंग। तो क्यों? क्योंकि कृष्ण को मालूम है अभी उनके प्रिय भक्त द्विज पत्नियां कृष्ण को कभी नहीं देखे, दे आर नेवर, कभी कृष्ण के बारे कृष्ण को कभी दर्शन भी नहीं किए, लेकिन कृष्ण से प्रति, कृष्ण के प्रति इतना प्रेम उनको हो गया था, अभी उनसे मुलाकात होने वाला है, मेरे प्रिय द्विज पत्नियां हैं उनसे मेरा मुलाकात होने वाला है। अभी इस बात को स्मरण करते हुए कृष्ण को बहुत जोर की हंसी आई और हंसते हुए कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, तुम जाओ, वापस जाओ, किनके पास जाओ, मेरे प्रिय भक्त है द्विज पत्नियां उनके पास जाओ। तभी उनके पास जाओ जब कृष्ण भेजा, थोड़ा वैसे तो विस्तार से बाद में आने के श्लोक में आएगा, लेकिन बड़ा अद्भुत घटना हुई उधर। कृष्ण ने कहा कि ये जाके कहना उन द्विजपत्नियों को, कृष्ण ने भेजा है, पहले क्या कहा था उनने द्विजपत्नियों के पास, बलराम के पास, बलराम का नाम पहले लेने के लिए बोला, बाद में मेरा नाम लेने के लिए बोला, जब ब्राह्मणों के पास भेजा गया था। लेकिन अभी कृष्ण ने कहा कि जब तुम जाओ द्विजपत्नियों के पास, तुम ये कहना कि कृष्ण ने भेजा है और बलराम को भूख लगी है, कृष्ण ने भेजा है और बलराम को भूख लगी है, क्योंकि कृष्ण मेरा नाम सुनते ही उनके अंदर अगाध प्रेम होगा और वो प्रेम से मुझे अर्पण करने के लिए बहुत सारे चीजें लेके आएंगे। हाँ, गलती से ही मत करना कि कृष्ण को भूख लगी है, गलती से भी ये मत कहना कृष्ण को भूख लगी है। अगर आप ये कहोगे तो क्या हो जाएगा, कृष्ण भूख मतलब दुख, मुझे दुख लगा है, ये बात सुनने मात्र से वो बेहोश हो जाएंगे। अगर वो बेहोश हो जाएंगे वो कुछ खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए क्या कहना पहले जाके, कृष्ण ने भेजा है और हमको और बलराम को भूख लगी, गलती से भी ये मत बोलना कृष्ण को भूख लगी है। अभी आगे वर्णन आता है इसमें, सारे ग्वाल बाल गए जाके ये बोलना शुरू किया द्विज पत्नियों को, कृष्ण ने हमको भेजा है। अभी जैसे कृष्ण का नाम सुने सब सारे द्विज पत्नियां बेहोश हो गई। अभी इस ग्वाल वालों को घूरने का, अभी क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, अभी ये लोग बेहोश हो गए तो ये सब सामान कौन देगा, प्रसाद कौन देगा, उनको तो खाएंगे कैसे। अभी कुछ ग्वाल बाल अपने आप से बात करने लगे कि अभी ये सब बेहोश हो गए, अभी कृष्ण को भूख लगा है तो उसको भूख कौन मिटाएगा। अभी जैसे कृष्ण को भूख लगा है ये बात सुन के सारे द्विजपत्नियां खड़े हो गए, कृष्ण को भूख लगा चलो सब लेके जाएंगे करके। तो ऐसे आगे के श्लोकों में बड़ा अद्भुत लीला का वर्णन आता है। असल में ये जो लीला का सार पहले मैंने कहा कि द्विज कुल में जन्म लेना वर्णाश्रम में सर्वश्रेष्ठ है, वंदनीय है। असल में नमो ब्राह्मण्य देवाय, ब्राह्मण को, ब्राह्मणों के देव है कृष्ण, लेकिन भले ही ब्राह्मणों का देह है, देव है, ब्राह्मण कृष्ण के लिए अति प्रिय है, लेकिन गोपी जन्म नहीं होगा तब तक कृष्ण आलिंगन नहीं करेंगे, कृष्ण के साथ रास नहीं हो पाएगा, कृष्ण के साथ खेत कूद नहीं हो पाएगा, वो ब्राह्मणों के साथ नहीं करते, खाली देवता के रूप में रहेंगे, ब्राह्मण आएंगे स्वीकार करेंगे, ब्राह्मण को ग्लोरीफाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे ये कृष्ण के पार्षद बनना और ब्राह्मण बनना बहुत अंतर है। तो कृष्ण जो है भले ब्राह्मणों का वर्णन गुणगान करते हैं, ये भागवतम के चौथे स्कंद में कई वर्णन आता है जहाँ चार कुमार जाते हैं वैकुंठ में, जब चार कुमार जाते हैं जय विजय के साथ उनका सब कुछ होता है, उस समय कृष्ण भागते भागते आते हैं, आके चार कुमारों का गुणगान करते हैं। जब चार कुमारों का जब गुणगान करते हैं, उन गुणगान करने के समय एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं चार कुमारों को, ये चार कुमारों को कहते हैं आप महान हो, आप ब्राह्मण हो, वो हो, गुणगान करते करते उन्हें कहा कि आप इनको माफ़ कर दीजिए, किनको जय विजय को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरे जो सेवक होते हैं ना उनका जो गलती होता है वो मेरी गलती है। खाली इस बात के ऊपर और अनेकों अनेकों बात भी कहा जाता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात के ऊपर आचार्य ने कहा है, भले ही कृष्ण ने उन चार कुमारों को गुणगान किया, लेकिन इनडायरेक्टली सारा जगत को उन्हें कहा कि मेरे जो सेवक होते हैं ना वो मेरे होते हैं, उनकी गलती जो है वो मैं अपना मानता हूँ। तो इन जय विजय को कृष्ण ने अपना माना, ब्राह्मण को गुणगान जरूर किया। इसलिए जो व्यक्ति किसी का गुणगान करता है ना, ये समझ लीजिए गुणगान करने मात्र से ये नहीं होता है कि वो कृष्ण ने अपने अपना माना है। तो इधर भी हम देखते हैं कि भले ही ब्राह्मणों का शास्त्रों में गुणगान हुआ है, लेकिन कृष्ण अपने प्रिय भक्त होते हैं उनको ही अपना मानते हैं। जैसे रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के संवाद में, उस समय जब रामानंद राय को आलिंगन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, और दोनों एकदम बिल्कुल भावविभोर होकर एकदम रो रहे थे और एकदम बिल्कुल जमीन बैठ के एक दूसरे के अंदर प्रेम के आंसू बह रहे थे, उस समय ये जो ब्राह्मण आए थे वो इस दृश्य को देख के चकित हो गए। तो उन्होंने देखा है, ब्राह्मणों ने देखा कि ये कैसा सन्यासी है शूद्र को स्पर्श कर रहा है, इसे तो शूद्र का दर्शन भी नहीं करना चाहिए, एक सन्यासी को देखना भी नहीं चाहिए, ये तो शूद्र को स्पर्श कर रहा है, ये कैसा सन्यासी है भाई, उनके मन में बड़ा संशय होने लगा। और दूसरी ओर ये तो रामानंद राय राजा है जिनको हम पालकी ऊपर लेके आ रहे हैं और पीछे हम उनको ढोल बाजा बजा के लेके हम वैदिक मंत्रों को उच्चारण की, तो राजा है, राजा को गंभीर होना चाहिए, ये सन्यासी का स्पर्श करके क्या रोना शुरू कर दिया, ये गंभीर होना चाहिए राजा को, ये रोना क्या शुरू कर दिया। तब उधर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ये ब्राह्मण विजातीय जानी, मतलब ये ब्राह्मणों को विजातीय समझते हुए अभी चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को सबके सामने आलिंगन करके इतना रोना धोना जो है प्रेमाश्रों को गिराना, वो थोड़ा सा शांत के विराम किया और बड़े भारी दिल से वो दोनों के बीच में विराह हुआ, यानी दोनों बिछड़ गए। अभी रामानंद राय गए जाके उन्होंने कहा कि शाम को मिलेंगे, दोनों के बीच में जो विराह है बड़े भारी दिल से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उधर ब्राह्मण लोग जो थे विजातीय थे और रामानंद राय कौन थे? स्वजातीय। तो विजातीय और स्वजातीय ये दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो स्वजातीय, मतलब जो कृष्ण के हृदय को समझ सकते हैं उसको स्वजातीय कहा गया है, जो कृष्ण के हृदय को नहीं समझ सकते वो विजातीय है। भले वेदों को समझ ना ले, हाँ वेदों में पारंगत भी क्यों ना हो, लेकिन जब तक कृष्ण का हृदय को नहीं समझते, अनटिलनेस वी अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ कृष्ण वी कैनॉट बी स्वजातीय। स्वजातीय और विजातीय में ही अंतर है, एक तो वेद को जानना, शास्त्र को जानना, दूसरा है कृष्ण का हृदय को जानना। जो कृष्ण का हृदय को जानता है वो स्वजातीय है, इसे स्वजातीय बनना है। तो स्वजातीय बनने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत को जानना। सारा वेद पढ़ने के बाद भी स्वजातीय बन नहीं सकते, कैसे बन सकते हैं? चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत। ये चैतन्य सिद्धांत ऐसा है जो व्यक्ति इसका एक बार आस्वादन कर लेता है, कोई व्यक्ति क्यों, शुद्ध किरणाएं, कोई व्यक्ति भी क्यों ना हो, चाहे मूर्ख व्यक्ति क्यों ना हो, बालक व्यक्ति भी क्यों ना हो, जो चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत पढ़ लेता है, चैतन्य चरितामृत पढ़ लेता है, भागवत पढ़ता है, वो स्वजात ही बन जाता है, जो कृष्ण के धाम में जा सकता है। धाम में ही जाना क्या है, उनके उनके सांगत्य करना, उनकी लीला में भाग लेना। लोग सोचते हैं धाम में जाना, कृष्ण धाम में जाना तो कौन सी बड़ी बात है, वो कोई बात नहीं है, कृष्ण की लीला में भाग लेना ये महत्वपूर्ण चीज़ है। पुत्रा भी गोलोक गए लेकिन कृष्ण का स्पर्श नहीं करा, तो इसलिए उद्देश्य क्या है, कृष्ण का लीला में भाग लेना। कौन सी लीला में भाग लेना, भौमा वृंदावन की लीला में भाग लेना। ये भी देखिए कि गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार हमारा जो गंतव्य है ना वैकुंठ है ना गोलोक, भी एक तरीके से बताया जाए, क्योंकि पूतना भी गोलोक गई है, कृष्ण की लीला में भाग लेना, टू पार्टिसिपेट इन द पास्ट टेंस ऑफ कृष्णा, ये तभी संभव है जब हम स्वजातीय होंगे। ये स्वजातीय होना है तो रामानंद राय जो चैतन्य महाप्रभु को मन को समझे, जो रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य मनोविष्टम मन की अभिलाषा को समझे, ये हमको जानना जरूरी है, खास करके चैतन्य चरितामृत के द्वारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, तो आगे के श्लोकों में बड़े अच्छे अच्छे से बातें आएंगे। हरे कृष्णा। कोई एनी क्वेश्चंस? ठीक है।